पंचदशी के कुटस्थ प्रकरण का 38वां श्लोक पहले उच्चारण कथम प्रविष्टो संगश्चेत् सृष्टिर्वास्य कथम भवेत् मायिकत्वं तयोस्तुल्यम् विनाशश्च समस्तयोः कथं प्रविष्टो संगश्चेत् सृष्टिर्वा अस्य कथं वद मायिकत्वं तयोस्तुल्यम् विनाशश्च समस्तयोः पंचदशी। बहुत यात्रा लंबी कर ली आप लोगों ने, आधी यात्रा पूरी हो गई। वेदांत जगत का समझो कि प्रवेशिकाए ग्रंथ है, प्रवेशिका पंचदशी और वेदांत परिभाषा दो में से आपने किसी एक ग्रंथ को लगा लिया तो आप वेदांत को अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो यह जो प्रसंग है एक श्रुति वाक्य है स एतमेव सीमानम विदार्य एतया द्वारा प्रापदिति। दूसरी श्रुति है तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। उस परमात्मा ने संसार का सृजन करके और पुनः प्रवेश किया। जिस प्रकार आप अपने लिए बड़ा सुंदर मकान बनाते, महल बनाते, बाद में गृह प्रवेश, ऐसे तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। उसने सृजन किया तदेव मल वही प्राविशत प्रवेश किया। अब कैसे प्रवेश किया तो भगवती श्रुति कहती है स एतमेव सीमानम विदार्य एतया द्वारा प्रापदिति। सीमानम बोलते मूर्धा भाग जो यहां पर है मूर्ध, इसके द्वारा उसने प्रवेश किया। तो पूर्व पक्ष यहां पर शंका कर रहा कि भाई जब आत्मा असंग है, असंग मतलब किसी प्रकार से किसी से बिल्कुल जरा कोई भी संबंध नहीं है, जब उस आत्मा असंग है तो असंग आत्मा का प्रवेश कैसे। आत्मा असंग है, व्यापक है, तो फिर प्रवेश कैसे हुआ, यह प्रश्न किया पूर्व पक्ष ने। ननु असंगस्य आत्मनः प्रवेशोऽपि अयुक्त इति संकते। जो असंग आत्मा है उस असंग आत्मा का प्रवेश कथन करना अयुक्त मतलब ठीक नहीं है। युक्त बोलते ठीक, अयुक्त मतलब ठीक नहीं है। प्रवेश हमेशा परिच्छिन्न वस्तु की होती है, परिच्छिन्न मतलब ससीम, जो मतलब कि एक सीमित हो, जैसे इसका प्रवेश हो जाएगा। पर जो व्यापक है, कण कण में मौजूद है, सर्वत्र है, उसका इस छोटे से शरीर में प्रवेश होना संभव है ही नहीं। तो आप कैसे कहते हैं कि आत्मा का इस शरीर में प्रवेश हुआ, यह शंका ग्रंथ है वही उठा रहे। कथम प्रविष्टो असंगश्चेत, चेत मतलब यदि, चेत का अर्थ है यदि। असंगस आत्मा संग है, कथम प्रविष्ट कैसे प्रवेश किया। दूसरा प्रश्न अस्य सृष्टि रिवा कथम वद, और इसका सृष्टि मतलब सर्जन भी कैसे हुआ। जब असंग आत्मा है तो प्रवेश संभव नहीं, प्रवेश बन भी जाए उस असंग आत्मा से सृष्टि नहीं हो सकती है, बदवन बतलाओ। तब उत्तर दिया नीचे ग्रंथ से आधे श्लोक से सवाल किया और उसी का समाधान किया आधे श्लोक से। मायिकत्वम तयोस्तुल्यम, कितना अच्छा उत्तर है। वेदांत जगत का एक ही उत्तर है, मायिक, सब मायिक है, सब काल्पनिक है। ये बात भी सही, सब मायिक ही है। जब मायिकत्व है, तयो मतलब कि प्रवेश और सृष्टि, ये दोनों क्या मायिक है। विनाशश्च समस्तयो, इसीलिए यह जो संसार और जो औपाधिक जीव, यहां दोनों लेना, संसार और औपाधिक जीवात्मा। औपाधिक मतलब कि जो अंतःकरण से विशिष्ट आत्मा, हाँ, या चिदाभास विशिष्ट जो है चैतन्य, उसका उपाधि विलय से नाश भी संभव है। जैसे देखो घटाकाश है, घट के बनने से घटाकाश उत्पन्न हुआ और घट को फोड़ दिया तो घटाकाश का विलय विनाश। ऐसे ही औपाधिक जीवात्मा का प्रवेश भी और विनाश भी, दोनों संभव है। यह जो बात आप सुन रहे हैं ना, बिल्कुल आपके जीवन की है, सबके जीवन की। भाई प्रत्येक जीवात्मा का उपाधि से प्रवेश हुआ, उपाधि विलय से विनाश होता है। अब और शंका आगे करेंगे, पहले देख लीजिए कि टीका कथम प्रविष्ट इति। यह जो ग्रंथ, इसको बोलते प्रतीक, ये प्रतीक ग्रंथ, ऊपर से प्रतीक दिया। कथम प्रविष्ट इति, इदम नोद्यम सिष्टौ अपि समानम इत्याह। यह जो नोद्य मतलब शंका, इदम नोद्यम सिष्टौ अपि समानम इत्याह, यह जो शंका है सृष्टि के विषय में भी समान है। जैसे कि असंग आत्मा का प्रवेश असंभव है, ऐसे ही असंग आत्मा से संसार का सृजन भी संभव नहीं। इसलिए सृष्टि इति ऐसा प्रतीक लिया। सृष्टि कर्तुर मायिकत्वात् न दोष इति आशंक्य। अब समाधान कर रहे कि देखो जी, सृष्टि का जो करने वाला वह सब कुछ कैसा मायिक है, वास्तविक नहीं, सब मायिक है। जिस प्रकार टेलीविजन की स्क्रीन पर छोटे से पर्दे पर आप देखते हैं कि धू धू कर जो है ना अग्नि जल रही है, जल प्रपात हो रहा, वहां पर नदियां बह रही हैं, सागर की तरंगे लहरें भी चल रही, पर है कुछ नहीं। वास्तव में होता तो आपके घर में रखा हुआ टेलीविजन का जो स्क्रीन है ना यंत्र, वह जल जाता, जल के राख हो जाता, बह जाता, पर सब देखते घंटों घंटों। ऐसे ही ये सब कुछ माइक है, वास्तविक नहीं है। सृष्टि कर्तुर माइकत्वात्, माइक होने से कोई दोष नहीं है। अयम परिहार, परिहार बोलते समाधान, उत्तर जवाब, प्रष्टरी अपि समान इत्याह। वह जो पूछ रहा है ना प्रवेश के विषय में, प्रष्टरी अपि समान इत्याह, प्रवेश में भी समान है, प्रवेश भी माइक है, वास्तविक नहीं, माइक प्रवेश है। जिस प्रकार से सामने एक दर्पण रखा, शीशा रखा हुआ है, 10x10 मान लो, 10 फुट लंबा, 10 फुट चौड़ा। अब 10x10 के छोटे से दर्पण में, शीशे में, ये पूरी बंबई दिखाई दे रही, पर हाथ लगाओ तो कुछ नहीं, शीशा ही शीशा, हाथ लगा कर देखना कुछ मिलेगा, कुछ नहीं दिखाई पड़ता है कि शीशे में बहुत बड़ी बंबई है, सागर है, सब कुछ है, परंतु कुछ नहीं। ऐसे ही जैसे शीशे में प्रतीति मात्र है पर अंदर कुछ भी नहीं, ऐसे एकमेव अद्वितीय चेतन पर पूरा ब्रह्मांड कल्पित है, वास्तविक है नहीं। हम लोग कल्पना में कितने सुखी दुखी हो रहे, विचार करो। सृष्टि नाम की कोई चीज है नहीं, सृष्टि कभी हुई नहीं। यह जो आप ग्रंथ न पंचदशी, यह आभासवाद प्रक्रिया से समझाते हैं। वेदांत में तीन प्रक्रिया है तत्व को समझने के लिए, आभासवाद, प्रतिबिंबवाद, अवच्छेदवाद। आभासवाद मतलब कि दर्पण में जो दिखाई दे रहा मुखारविंद वह प्रतीति मात्र है, काल्पनिक है, झूठा है, मिथ्या है, इसका नाम आभासवाद है। शीशे में कभी आपका मुखारविंद पैदा हुआ ही नहीं। एक मिनट, नहीं, ये जो गर्दन के ऊपर है ना मुखारविंद, ये सत्य है, यही सब कुछ है, पर दर्पण में दिखाई पड़ने वाला जो मुखारविंद है, जो फेस है ना, वो मिथ्या है, झूठा है, काल्पनिक है। तीनों काल में शीशे में आपका चेहरा पैदा हुआ ही नहीं, इसका नाम आभासवाद है। अच्छा, आप देखिए प्रतिबिंबवाद। प्रतिबिंबवाद वाले कहेंगे कि शीशे में एक नया अनिर्वचनीय एक आपका मुखारविंद उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ, व्यवहारिक है, प्रातिभाषिक है, वो मिथ्या नहीं, मिथ्या नहीं बोलेंगे। ये क्या बोलेंगे, व्यवहारिक है, वो झूठा नहीं, सत्य है। तो कितना दुर्मंत्र हो गया, सत्य है, नहीं सत्य मानेंगे। देखिए दर्पण में दिखाई पड़ने वाला जो मुखारविंद चेहरा है ना, आभासवाद वाले मिथ्या बोलेंगे पंदसीकार, और बोलेंगे प्रतिबिंबवाद वाले सत्य बोलेंगे, बिल्कुल सच्चा है, जो यह है वही वह है, ऐसा इनकी समझाने का तरीका है। शीशे में जो दिखाई दे रहा आपका फेस चेहरा, वो बिल्कुल सत्य है, और वहां पर उत्पन्न हुआ, जितने काल तक देख रहे उतने काल तक उत्पन्न हुआ, बस मिथ्या है द्वैत बुद्धि। प्रतिबिंबवाद के समझाने का तौर तरीका है कि शीशे में एक नया अनिर्वचनीय चेहरा उत्पन्न हुआ, वो सत्य है, झूठा नहीं, जो आपके गर्दन पर मुख है वही वह है। पर मिथ्या क्या है कि जो द्वैत की भ्रांति, इनका तरीका है, ये द्वैत हो गया ना कि गर्दन का मुख है, वो शीशे का मुख है, द्वैत ही मिथ्या है, ये तरीका इनका समझाने का है। और इसी बात को पंचदशीकार कहेंगे, नहीं जी, शीशे का मुख कैसा झूठा है, काल्पनिक है, मिथ्या है, वह उत्पन्न हुआ ही नहीं, वो खाली दिखाई दे रहा, ये तुम्हारी भ्रांति है, शीशे में तीनों काल में चेहरा पैदा हुआ नहीं। अब बोलो सरस्वती माता क्या शंका। हाँ, ये तरीका, इसको बिल्कुल पक्का रखना। अच्छा, तीसरा हो गया आपका अवच्छेदवाद। ये कहते हैं कि अंतःकरण के जो परिधि में है ना, उस परिधि उन सीमा में जिस चैतन्य का प्रतिफलन हो रहा है उसका नाम है जीव, अंतःकरणावच्छिन्न चेतन का नाम जीव, और मायावच्छिन्न चेतन का नाम ईश्वर, और दोनों के अधिष्ठान का नाम ब्रह्म है। या अवच्छेदवाद, जैसे समझने के लिए, घट के परिधि में जो आकाश है उसका नाम घटाकाश, छोटे से घट के सीमा में जो आकाश स्पेस है उसका नाम घटाकाश, इस प्रेमपुरी जो स्थान है इसमें बोलेंगे आपका मठाकाश। आकाश सब दोनों एक है, पर उपाधि से अलग अलग हो गया। ऐसे ही अंतःकरण से अवच्छिन्न मतलब युक्त, अवच्छिन्न का अर्थ युक्त विशिष्ट, जो अंतःकरण से विशिष्ट चेतन का नाम हो गया जीव, और माया अवच्छिन्न चेतन का नाम हो गया ईश्वर, और दोनों का जो अधिष्ठान है वह हो गया ब्रह्म अधिष्ठान चेतन। ये इनकी समझने समझाने का तरीका। अब देखो, घड़ा फूट गया तो घटाकाश महाकाश रूप हो गया, ऐसे ही जब आपके अंतःकरण उपाधि का तत्व ज्ञान से विलय होगा, तत्व ज्ञान पर्यंत स्थाई है, ये सब सारी बात अभी आ रही है, आज ही आ जाएगी आपको, तत्व ज्ञान के पहले पहले जीवात्मा स्थाई है। जीवा पेतम किल म्रियते जीवो न म्रियते, अभी बात आगे श्रुति आ रही है, मतलब जीव की मौत नहीं होती है शरीर पर, जीव की मौत होती है कब होगी, मोक्ष के समय, मोक्ष तक स्थाई है जो जीव है ना, ये जीव की, जीव का नाश होगा कब, तत्व ज्ञान से। तो जीव के उपाधि के नाश से जीव का नाश माना तत्व ज्ञान से, ये सिद्धांत है आभासवाद पंचदशी कार्य का। ये जो सिद्धांत है ना, जैसे देखो घड़ा फूट गया, कंकड़ मार दिया, डंडा मार दिया, तो घड़ा के फूटने से घटाकाश समाप्त, मतलब घटाकाश महाकाश में विलय हो गया, सीधी बात। तो ये सिद्धांत हो गया पंचदशी काराभासवाद का। इसी बात को प्रतिबिंबवाद वाले कहेंगे कि ऐसा नहीं जी, उस घटाकाश का नाश नहीं हुआ, बोले घटाकाश महाकाश रूप हो गया, वो पहले से दोनों एक ही थे, द्वैत की प्रतीति, द्वैत का बाद हो गया। इसी बात को बोलेंगे प्रतिबिंबवाद वाले कि पहले से दोनों एक ही थे, द्वैत की प्रतीति हमारी भ्रांति थी। जो घड़ा में आकाश है, ये जो मठ में आकाश है, ये महाकाश, तीनों एक हैं। नाम रूप जो अलग अलग भाषित हो रहे हैं ना, यही मिथ्या है। इन उपाधियों के नाश से उस आकाश का नाश नहीं होता है, केवल उपाधि का बाद होता है। ये बात बोलेंगे आपको प्रतिबिंबवाद वाले। जैसे शीशे में दिखाई पड़ने वाला जो आपका फेस है ना, चेहरा मुखारविंद, वह और गर्दन का चेहरा दोनों एक ही है, परंतु पंचदशीकार कहेंगे एक नहीं, वह मिथ्या है, इसमें दर्पण में दिखाई देने वाला। वह दोनों के समझाने का तरीका इतना अंतर है। अब यहां देखिए, ये कहते हैं कि अनयोर मायिकत्व हेतु समानित्या, ये दोनों मायिक हैं, संसार का सर्जन भी अप्रवेश भी माइक है। माइक होने पर इतनी समस्या है, वास्तव में हो जाए तो कितनी बड़ी समस्या हो जाए, वास्तव में हो जाए तो बहुत गड़बड़ झाला हो जाएगा। ये तो माइक है, काल्पनिक है, इतनी बड़ी समस्या। प्रत्येक आदमी अपने अपने प्लान का पुलिंदा बना के परेशान रहता है, यहां जाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, होता है कि नहीं करेंगे, वो करेंगे, सबके मन में चल रहा है, इसी का नाम आया। जो हम सभी लोगों के मन में एक मन की वृत्ति प्रत्येक क्षण चल रही है कि जो है ना, आज यह करेंगे, कल ऐसा करेंगे, परसों वैसा करेंगे, अगले साल ऐसा करेंगे, इसी का नाम है माया, ये हमारी कल्पना, ऐसे कुछ होना नहीं जाना नहीं, पर ये भ्रांति है, इसी का नाम माइक है। ऐसी संसार ही पूरा माइक है, इससे अधिक कुछ भी नहीं। आगे देखिए, प्रज्ञान घन एव एतेभ्यो भूतेभ्य समुत्थाय तानि एव अनुविनश्यति न प्रतिसंज्ञा अस्तीति औपाधिक रूपस्य विनाशित्व प्रतिपादिकां श्रुति दर्शयति। ये भी आप लोगों का पुण्य है, वेदांत का श्रवण कोई सामान्य बात नहीं। कठोपनिषद में यमाचार्य नचकेता के विषय में बोल रहे ना, श्रवणयापि बहुभिर्योन लभ्य, सुनने को भी लोगों को वेदांत नहीं मिलता, भागवत मिल जाएगा, रामायण मिल जाएगा, शिव पुराण मिलेगा, देवी पुराण मिल जाएगा, महाभारत मिल जाएगा, सब सुनने को मिल जाएगा, परंतु श्रवणयाग बहुबीर योन लभ्य, वेदांत का श्रवण भी बड़ा दुर्लभ होता है, क्योंकि वेदांत में आपको कोई कहानी नहीं, कथा नहीं, नाच गा नहीं, तमाशा नहीं, बात यह है ना कि सारी इंद्रियां हमारी माइक हैं, आंख माइक, कान माइक है ना, तो इंद्रियां माइक है, हाथ पैर सब माइक है, मन भी माइक है, तो सारे यंत्र हमारे क्या है, माइक है, दसों इंद्रियां। तो माइक चीज इन यंत्रों को बड़ा अच्छा लगता है, जो माइक चीज है ना, जो नाच गान तमाशा कथा कहानी राजा रानी की इधर उधर की दूसरे घर की झगड़ा हो महाभारत हो, खूब अच्छा लगता है, क्योंकि यंत्र हमारे माइक है, जल्दी उसको ग्रहण कर लेते, पिकअप कर लेते। परंतु वेदांत कैसा अमाइक है, ये मायातीत है, इसी माया का गंध भी नहीं है। इसीलिए जो वेदांत श्रवण हम लोग करने चलते हैं ना, सारे यंत्र सारी इंद्रियां क्या बोलते, हड़ताल कर देते, जवाब देते, क्या बोलते, ऊपर ऊपर जा रहा, समझ में नहीं आ रहा, परंतु धैर्य रखना। ये प्रेमपुरी संस्था का बहुत बड़ा आपके प्रति समझो उपहार है, भेंट है, पूरे बंबई में उपहार भेंट है। कुछ अमायिक तत्व को आप आराम से समझ लेते हैं, और इससे बड़ी उपलब्धि संसार में कुछ हो नहीं सकती है। जो भी आपको मिला है और मिलने वाला है, या जो मिल चुका है, सब एक दिन छिन जाएगा, पक्की बात है। चाहे शरीर हो, ये इंद्रियां हो, चाहे संसाधन हो, चाहे पदार्थ हो, धन दौलत, सब छिन जाएगा। पर यह जो अमायिक आत्मा है, इसको कोई छीन नहीं सकता है, ऐसी अमायिक आत्मा है। वो कहते ना, एक राजा था, जंगल में गया तो हरिण को जैसे ही मारने चला, वैसे मृगी बोल जोर से बोली, राजन मुझे मारो मत। बोले क्यों नहीं मारूं भाई, बोले मुझे मारोगे तो पूरे ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा, ब्रह्मांड का प्रलय हो जाएगा। राजा ने कैसे कैसे हो सकता, मृगी ने कहा कि जब मैं मर जाऊंगी तो बताओ सूर्य चांद पृथ्वी सब रहेंगे। राजा ने कहा सब रहेंगे, तेरे मरने से क्या फर्क पड़ने वाला। मृगी ने कहा हमारे लिए सबका प्रलय हो गया ना, जिसके लिए होगा उसके लिए होगा, हमारे लिए कुछ भी नहीं रहा। ऐसे ही हम लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं ना, संसाधन धन दौलत व्यवहार बंधु बांधव बना रहे, परंतु शरीर छूटने के बाद सब बिखर जाएंगे, कुछ नहीं रहने वाला। पर एक आत्मा का नाश नहीं होने वाला है, वही बात यहां पर आप श्रवण कर रहे हैं, अमायिक आत्मा का। प्रज्ञान घन एव एतेभ्यो, देखो घन का अर्थ ठसा ठस, मतलब इस पेट शून्य का नाम घन होता है, तो वह कैसा प्रज्ञान घन है, मतलब चैतन्य चैतन्य है, उसमें जरा भी माया का गुंजाइश नहीं है। प्रज्ञान घन आनंद घन, हम लोग बोलते हैं ना आनंद घन, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय बोलते हैं ना, तो आनंद घन मतलब आनंद ही आनंद है, वहां दुख का जरा भी लेस मात्र भी गुंजाइश नहीं है, इसलिए आनंद घन बोलते हैं। श्री कृष्णा अवतार था आनंद घन, आनंदा अवतार, तो प्रज्ञान घन आनंद घन है। एतेभ्यो भूतेभ्य समुत्थाय, और वही से यह जीवात्मा समझो कि अलग से औपाधिक रूप से प्रकट हुआ, और तान एव अनुविनश्यति, जिस प्रकार से समुद्र से लहरे तरंग बुद्बुद उत्पन्न होते हैं, बाद में समुद्र में विलय हो जाते हैं, ऐसे प्रत्येक जीवात्मा प्रज्ञान घन से प्रकट हुए, उत्पन्न हुए, अपन प्रज्ञान घन में विलय हो जाता है, वही बात बता रहे। तान एव अनु विनश्यति, न प्रेत संज्ञा अस्ति, मरने के बाद इनका नामो निशान नहीं रहता है। इति औपाधिक रूपस्य विनाशित्व प्रतिपादिकम श्रुति दर्शयति, औपाधिक रूप, औपाधिक मतलब अंतःकरण उपाधि या बुद्धि उपाधि या विद्या उपाधि, आभासवाद के अनुसार अविद्या उपाधि है, और छेदवाद के अनुसार अंतःकरण उपाधि है। तो औपाधिक रूप जो चिदाभास है, अविद्योपाधिक है जो जीवात्मा, उस उपाधि के विनाश से उसका नाश हो जाता है। यही बात यहां बतला रहे श्रुति, दर्शती श्रुति दिखला रही है। समुत्थायैश भूतेभ्यः तान्नेवानो विनश्यति विस्पष्टमिति मैत्रेये याज्ञवल्क्य उवाच हि। समुत्थायैश भूतेभ्यः तान्नेवानो विनश्यति विस्पष्टमिति मैत्रेये याज्ञवल्क्ये उवाच हि। कहते कि मैत्रेये वेदान्यक उपनिषद में मैत्रेयी को याज्ञवल्क जी ने बताया है। अदो को वेदांत अधिकारी सब हो गए कि नहीं हो गए, है ना? यह कथन करना कि वेदांत केवल जो है ना संन्यस्त लोगों के लिए, मैत्रेयी, कात्यायनी, गार्गी, सुलभा, ये सब कौन थी मालूम है? उनकी धर्म पत्नी थी किसकी? याज्ञवल्क जी की। और नचिकेता किसके थे पुत्र मालूम है? उद्दालक गौतम के पुत्र थे। ये पुत्र पत्नी सभी इस वेदांत श्रवण के अधिकारी हैं। स्वाध्यायेर महत पापम ग्रंथि गृह मेधिनः, महाभारत का अनुशासन पर में आता है 101 अध्याय का 21वां श्लोक है यह शांति पर्व का, यानी अनुशासन पर्व का। स्वाध्याय से गृह मेधिन बोलते सदगृहस्थ, महत पापम घ्नन्ति, महान से महान पाप का ताप का नाश हो जाता है। तो स्वाध्याय सबके लिए है। तो देखो मैत्रेय को याज्ञवल्क्य जी बताते हैं, लेकिन नहीं कुछ लोग बोलते हैं ना, इसलिए मैंने कहा कि वेदांत तो केवल साधु सन्यासी ब्रह्मचारी लोगों का विषय है, या जो बड़े बूढ़े हैं जो मौत के अब बिल्कुल किनारे आ गए उनके लिए, उनके लिए नहीं सबके लिए है। स्वयं याज्ञवल्क्य अपनी प्रिय धर्म पत्नी मैत्रेय को समझा रहे हैं वेदांत की बात। तो वेदांत के सभी अधिकारी हैं, सभी जिज्ञासु। क्या मैत्रेय को बोल रहे? समुत्था एष भूतेभ्य, देखो हे देवी, पत्नी को बोल रहे हैं कि यह जो जीव है उसी प्रज्ञान गण से प्रकट हुआ, तानी एव अनु विनश्यति, उसमें इसका विलय हो जाता है। यह स्पष्ट कहा गया है वेदान्यक उपनिषद में, याज्ञवल्क ने मैत्रेयी को समझाया है। जिस प्रकार समुद्र से बुद्ध पैदा हुआ, हम लोग उस उतना ही हैं। ये व्यर्थ का ईमान है कि हम इतने बड़े, हम ऐसे हैं वैसे, हम विद्वान है ज्ञानी, एक ज्ञानीपना का ईमान भी तत्व ज्ञान में प्रतिबंधक है। ये जो ज्ञानीपना है, साधुपना, महात्मापना, सज्जनपना है, ये जो अभिमान है, या जो मैं बहुत बड़ा धनी हूं, सेठ हूं, साहूकार हूं, ये सारा अभिमान आपकी आत्मज्ञान का विरोधी है, प्रतिबंधक है। यहां बतला रहे कि समुद्र में बुद्ध के समान जीवात्मा पैदा हुआ। अब बुद्ध कब तक रहता है? जब तक नई कोई तरंग नहीं आती है, नई तरंग आए बुद्ध विलय हो जाता है। ऐसे हम लोग हैं, बुद्ध की तरह से प्रज्ञान घन से जरा प्रकट हुए और बुद्ध के समान अभिमान कर बैठे, हम बहुत अच्छे हैं, मोटे हैं, तगड़े हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, बुद्ध अभिमान कर, तो वैसे अभिमान हो गया। और जहां दूसरी हवा आई, विरोधी हवा, वैसे गोविंदाय नमो नमः हो जाते हैं। तो अहंकार करना ही व्यर्थ है, यह अज्ञान से हो रहा, ना समझी से हो रहा, देखो तो कुछ भी नहीं है, कुछ कुछ नहीं भाई। शरीर का कोई भरोसा नहीं, क्षणार्धम ना जानामी विधाता किम करिष्यति, एक क्षण का भरोसा नहीं, एक पल का भरोसा नहीं, अगला क्षण कैसा क्या होना। फिर भी जीवात्मा पूरे ब्रह्मांड को अपने सर पर लेके चल रहा है कि मैं ही इसका संचालक हूं, मैं ही सब कुछ करने वाला, ऐसा होता है। ये मानसिक मनोवृत्ति होती है, बाहर से करें तो कोई इसमें क्षति नहीं, ये जो मानसिक मनोवृत्ति बनती है वही जो है ना प्रतिबंधक है आत्मज्ञान का। वेदांत परिभाषा में आपने श्रवण किया होगा, पाठ चला था ना, यहां नहीं चला, एक बार चला शायद, हाँ हाँ मुझे याद, में भी था, चला वेदांत परिभाषा, तो उसमें आता है कि घट वृत्ति के लिए पट वृत्ति विरोधी वृत्ति है, ऐसी जो ब्रह्माकार वृत्ति है, अखंडाकार वृत्ति है, उस अखंडाकार वृत्ति का विरोधी ये संसाराकार वृत्ति है। जब हमारे मन में संसार की वृत्ति चलती है ना, तो वह वृत्ति जब चलती रहती है तो ब्रह्माकार वृत्ति ये टिक नहीं पाती है। इसीलिए कह रहे कि भाई इस संसार का अस्तित्व बिल्कुल काल्पनिक है, प्रतीति मात्र है। जैसे कि दर्पण में जो मुखारबिंद दिखाई पड़ रहा, उसकी सत्ता कब तक है बताओ? हाँ, ज्ञातिक सत्ता जब तक आप देख रहे तभी तक है, पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा। जितने काल तक शीशे में देख रहे हैं उतने काल तक आपका मुखारबिंद उसमें दिखाई दे रहा, पर है कुछ नहीं भाई। गर्दन में माला पहने तो माला को तुम देख सकते, छू सकते ना, पर वहां माला दिखाई दे सुंदर फूल की, परंतु आप छूओ तो कुछ नहीं। ऐसी संसार है, संसार में सत्य चित आनंद की प्रतीति हो रही। देखो बहुत गंभीर प्रश्न है यार, आंख खुलकर जब देखते हैं तो संसार की सत्ता दिखाई पड़ता है, सत्ता बोलते मौजूदगी, इसकी स्थिति मालूम पड़ रही। चित मतलब ज्ञान, ये बहुत सुंदर वस्तु, अच्छी वस्तु है, अच्छे काम की चीज है, हमारे काम आने वाली, इसको बोलेंगे चित्त ज्ञान बोलेंगे। ये जो है ना हमें मिलना चाहिए, इसी का नाम है चित्त। कोई पदार्थ हम देखते हैं तो देखने के बाद सबसे पहले उसकी सत्ता का निश्चय होता है, फिर चित्त मतलब उसका ज्ञान होता है। ज्ञान होने के बाद उसे आप लेना चाहते हैं, इसके बाद आनंद, ये बड़ा इससे मजा आएगा, आनंद आएगा, घर का शोभा बढ़ाएगा, ऐसा सोचते ना, पर है कुछ नहीं। जैसे दर्पण में मुखारबिंद की प्रतीति मात्र है ना, ऐसे संसार में सत्य चित आनंद की प्रतीति है, उपलब्धि बिल्कुल नहीं। जैसे दर्पण में हाथ से कुछ डालो, कुछ भी उपलब्ध नहीं होना, ऐसी संसार में सत्ता की, चैतन्य की, आनंद की प्रतीति हो रही, उपलब्धि नहीं। उपलब्धि तो आपके अपने स्वरूप में, जो आनंद स्वरूप है, चित स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, वही बात बता रहे हैं आप भाई। एस एव प्रज्ञान घन जो आत्मा है, एतेभ्यो देहेन्द्रियादि रूपेभ्य पंचभूत कार्येभ्यो निमित्त भूतेभ्य उपाधिभ्य समुत्थाय जीवत्वैमानं प्राप्य तान्येव देहादीनि विनश्यन्ति अनु विनश्यति तेषु विनश्यत्सु तत्कृतं जीवत्वैमानं जहाति। इस मतलब यही जो प्रज्ञान घन आत्मा है, इसका अर्थ होता है साक्षात जो सामने है। एतेभ्यो देहेन्द्रियादिभ्य इसी शरीर इंद्रिय आदि के द्वारा जो पंचभूत का कार्य है, पंचभूत से शरीर बना है, पंचभूत में विलय हो जाता है। निमित्त भूतेभ्यो, आप जिस शरीर का बड़ा भारी अभिमान करते न, मैं, कोई बोलता कौन बोलते मैं, यहां तक क्या अभिमान में अपना नाम भी ठीक से नहीं बताते, मैं बोलते ना मैं, क्या मुझे जानते नहीं मैं फला। हाँ, वो कैसे बना, तो पंचभूत से बना, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंचभूत से बना, और अंत में या पंचभूत में मिल जाना है, आपके साथ एक रत्ती भर नहीं जाना है। वही बता रहे पंचभूत का कार्य है। निमित्त भूतेभ्य उपाधिभ्य, यही उपाधियां हैं, इन्हीं उपाधियों से खड़ा हुआ समुत्थान मतलब प्रकट हुआ, खड़ा हुआ जीवत्व का ईमान किया आपने, पहले शरीर बना, शरीर के अंदर अंतःकरण आदि उपाधि, इसके बाद उपाधि में चैतन्य का प्रतिबिंब, फिर बोलते हैं कि ये जीवात्मा। तो सबसे पहले शरीर आदि उपाधियां, उपाधियों में चैतन्य का प्रतिफलन, जिसको आप बोलते चिदाभास, जीवात्मा की परिभाषा पंचदशीकार ने पहले बता दी है, चैतन्यम यद अधिष्ठानम लिंग देहस्थ यह पुनः चिच्छाया लिंग देहस्थो तत्संग जीव उच्यते। इसको कंठ कर लेना, बार बार आता है, चेतन जिसका अधिष्ठान है, चिच्छा बोलते चिदाभास, और इन सबका अधिष्ठान है चेतन आश्रय है, इन तीनों के संग समुदाय को जीव कहते हैं। यह जो जीवात्मा है, वो जीवात्मा किसे बता रहे कि अभिमान प्राप्त प्राप्त करके तान एव देहादि, उन्हीं देहादि में उनके विनाश से अनुविनश्यति विनाश हो जाता है, तेषु विनश्यत्सु तत्कृतम जीवत्वहिमानम जाति, शरीरादि के विनाश से जीवत्व का हिमान भी समझो कि नष्ट हो जाता है। एवं प्रकारेण सोपाधिक रूपस्य विनाशित्वम यागवल्क्यो मैत्रेये उवाच उक्तवान इत्यर्थ। इस प्रकार से सोपाधिक जो आत्मा है, शुद्ध आत्मा का विनाश नहीं, शुद्ध आत्मा है, कुटस्थ रूप है, वह तो ब्रह्म स्वरूप है, त्वम पदार्थ का वाच्यार्थ है चिदाभास। वाच्यार्थ बोलते हैं जिस शब्द को सुनने के बाद, जिस पदार्थ की नियम से प्रतीति हो जाए, अपने आप हो जाए प्रतीति, उसका नाम वाच्यार्थ है। जैसे हमने कहा गंगायाम पंच नाव संति, गंगा में पांच जो है नाव हैं, तो सीधा ज्ञान हो गया गंगा के जल धारा के प्रवाह में पांच नाव हैं, सीधा अर्थ हो गया इसका नाव है। और वही हमने कहा कि गंगायाम घोष, गंगायाम महल कह दिया, घोष बोलते झोपड़ी को, महल ले लो आप, तो गंगायाम घोषक आया महल कह दिया, तो ये लक्ष्यार्थ करना पड़ेगा भाई, गंगा में समुद्र के बीच में संभव नहीं है महल, तो किनारे आजू बाजू में जो है ना महल खड़ा होगा, झोपड़ी बनी होगी, ऐसा लक्षणा करते हैं। ऐसे ही त्वम पद का वाच्यार्थ है चिदाभास जीवात्मा, इसी का लक्ष्यार्थ है कुटस्थ साक्षी, जिसको कहते हैं वह हो गया लक्ष्यार्थ शोधित अर्थ। तो लक्ष्यार्थ का नाश नहीं होता, नाश होता है औपाधिक जीव का, वो भी उपाधि के नाश नाश होता है, ये भी ध्यान रखना। आभासवाद के अनुसार वह जीवात्मा उपाधि से खड़ा हुआ, उपाधि के नाश से नाश हुआ, परंतु प्रतिबिंबवाद के अनुसार वह जीवात्मा बिल्कुल नित्य है, शुद्ध बुद्ध मुक्त, उसका नाश होता ही नहीं, तो ब्रह्म रूप है जो जीव है ना, जीव ब्रह्म ही बना पर जीव ब्रह्म रूप ही है, ये द्वैत बुद्धि का वाद होगा बस इतना ही। प्रतिबिंबवाद के अनुसार वो जो द्वैत है ना, कि वो दर्पण का मुख अलग है, यहां का अलग है, ये द्वैत ज्ञान का बाद होगा। ऐसे ही जीव मैं अलग हूं, परमात्मा अलग है, इस द्वैत ज्ञान का बाद होगा। परंतु जीव बिल्कुल सत्य है, ब्रह्म रूप ही है, उससे अलग है ही नहीं है, वही बता रहे यहां पर। एवं प्रकारेण सोपाधिक रूपस्य सोपाधिक रूप का विनाशित विनाशपना याग्वलक अपने प्रिय पत्नी मैत्रेयी के लिए बताया है। निरुपाधिक आत्मा का विनाश होता ही नहीं, वह तो ब्रह्म स्वरूप है। बालो बताओ सोपाधिक है कि निरुपाधिक है, निर्णय कर लो। आप लोग वास्तव में सोपाधिक आत्मा है या निरुपाधिक आत्मा है, कौन सी आत्मा है, फायदा कौन सा है, सोपाधिक मानने में कि निरुपाधिक, दोनों? हाँ, दोनों में से एक नहीं, बात सही है, न सोपाधिक है न निरुपाधिक है, क्योंकि दोनों शब्द का विषय शब्दातीत बिल्कुल ब्रह्म स्वरूप है, अहम ब्रह्मास्मि। पर व्यवहारिक दशा में तो मानना पड़ेगा, एक व्यवहार में तो एक मानना पड़ेगा कि भाई मैं सोपाधिक हूं, और सोपाधिक से सारा व्यवहार चल रहा, सोपाधिक जीवात्मा के द्वारा ही सारा ये संसार का व्यवहार ये चल रहा, श्रवण करना, सुनना, सुनाना, जो भी कुछ है सब सोपाधिक समझो कि आत्मा में ही चल रहा है। थोड़ा सा फायदा सोपाधिक आत्मा में है ना, उपाधि अच्छी हो तो अच्छा आनंद आएगा, और उपाधि जरा कुछ गड़बड़ हो तो दुखी होना पड़ता है कि नहीं। उपाधि मतलब शरीर उपाधि है, मकान उपाधि है, या स्वस्थ शरीर है तो आनंद आएगा, है ना, और ये शरीर है जरा बीमार हो गया, रुग्ण हो गया, तो शरीर के बीमार से थोड़ा मणिराम भी बीमार हो जाता है तो बेकार बेकार लगता है कि नहीं। तो उपाधि की महिमा है अपने आप में, तो उपाधि की शुद्धि होनी चाहिए। उपाधि की शुद्धि के लिए है निष्काम कर्म, उपासना, भक्ति, भजन, जप, तप, तपस्या, सब उपाधि की शुद्धि के लिए, अंतःकरण की शुद्धि। अंतःकरण शुद्धि का अर्थ उपाधि शुद्धि, जो उपाधि शुद्ध हो गया, अजा कमरा बिल्कुल साफ सफाई है, शरीर भी स्वस्थ है, अच्छे कपड़े हैं, अच्छा भोजन पानी है, तो अच्छा रहेगा ना। वही जो है झोपड़ झोपड़ पट्टी हो, गंदगी हो, तो सौ बीमारियां। तो उपाधि की महिमा भी अपनी जगह थोड़ी है, ऐसी थोड़ी तो है, व्यवहारिक जगत में है, भले पारमार्थिक में न, व्यवहारिक जगत में उपाधि की भी महिमा अपने आप में, इसलिए उपाधि को भी आपको थोड़ा लेके चलना पड़ेगा। शेष कल सुनेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।